बगैर सोचे समझे, बगैर मेरे स्टैट्स को देखे उन्होंने मुझे क्रिटिसाइज किया,
गोल्ड मेडल मिला और पूरा देश जो दुआ दे रहा था और जो मेरी मेहनत थी वो रंग लाई।
रैंक वाइज अगर देखें तो इंडिया एशियन टीम से काफी ऊपर है।
इमामुल हक में इतना एतमाद कहां से आया? सुनिए नौजवान ओपनर का खुसूसी इंटरव्यू और एशियन गेम्स में भारत की उम्दा कारकर्दगी, लेकिन पाकिस्तान के 35 खेल कारकर्दगी सिफर। खेल के मैदान से अब्दुल रशीद शकूर का सलाम। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की इस वक्त सबसे बड़ी खूबी उसके नौजवान बासलाहियत खिलाड़ी हैं, जो T20 खेलें तो आलमी नंबर एक पोजीशन पर नजर आते हैं, वनडे इंटरनेशनल खेलें तो आलमी रिकॉर्ड्स बना देते हैं और टेस्ट क्रिकेट की बात हो तो इंग्लैंड को उसी की सरजमीन पर जेर कर देते हैं। इन्हीं नौजवान खिलाड़ियों में से एक ओपनिंग बैट्समैन इमामुल हक भी हैं। इमामुल हक को जब पहली मर्तबा पाकिस्तानी टीम में शामिल किया गया तो उन्हें इंजमामुल हक के भतीजे की नज़र से देखा गया, क्योंकि इंजमामुल हक ने ही उन्हें टीम में मुंतखब किया था। लेकिन इमामुल हक ने यह साबित कर दिया कि सिलेक्शन का मामला चचा भतीजे का नहीं है, बल्कि बात कारकर्दगी की है। मैंने इमामुल हक से पूछा कि आप में इतना भरपूर एतमाद कहाँ से आया है?
अल्लाह इज़ वेरी काइंड टू मी कि जब से मैंने इंटरनेशनल क्रिकेट खेलना शुरू किया है तो चीज़ें मेरे लिए काफ़ी आसान होती जा रही हैं, लेकिन मैं इसमें अपने जो कोचेज़ हैं उनका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और मेरी जो हार्डवर्क है क्योंकि, और मैं इसमें मीडिया का भी बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने माशाल्लाह इतना क्रिटिसाइज़ किया तो वो मेरे लिए अच्छा हुआ कि मुझे एक वो मिल गया था कि मैंने इनको गलत प्रूव करना है। और वो मुझे भी क्रिटिसाइज़ करते थे तो मैं कुछ और मेहनत करना शुरू करते था, मैं और फोकस हो जाता था, तो इसमें मैं मीडिया वालों का भी बहुत शुक्र अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने बगैर सोचे समझे, बगैर मेरे स्टैट्स को देखे जो है उन्होंने मुझे क्रिटिसाइज़ किया, तो उससे मुझे फ़ायदा ये हुआ कि मुझे एक वो मिल गया था कि यार मैंने इनको गलत प्रूव करना है ताकि ये आइंदा ना बोले। लेकिन मुझे पता है वो तो जब तक मैं खेलता रहूँगा बोलते रहेंगे, लेकिन उससे ये अच्छा हुआ कि मेरे लिए काफ़ी चीज़ें ये हो गई कि मैं काफ़ी हार्डवर्क और शुरू कर दी, फोकस हो गया, डिटर्मिनेशन हो गया, जिससे मेरे लिए चीज़ें आसान हो गई।
इमामुल हक से मेरा अगला सवाल था कि कोई ऐसी बात, कोई ऐसा मशवरा जो आपने गिरह में बांध लिया हो और वो आपके काम आ रहा हो।
ऐसी तो कोई बात नहीं है कि एज ए क्रिकेटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको कह सकूं कि जी ऐसा कुछ किसी ने मुझे बात की है, बट यह कि मेरे फादर का बड़ा रोल है इसमें। उन्होंने मुझे हमेशा एक बात कहते थे कि कभी भी जो हार्डवर्क होती है ना वो इंसान को बहुत आगे ले जाती है, लेकिन आप लोग हम हार्डवर्क बहुत जल्दी छोड़ देते हैं अगर हम जल्दी से फेल हो जाते हैं। तो कभी भी शॉर्टकट्स जो है लाइफ में, चाहे वो क्रिकेट हो चाहे वो कोई और भी प्रोफेशन हो, आप शॉर्टकट्स कभी ना लो, हमेशा अपना पेशेंस रखो और अपने वक्त का इंतजार करो, तो अल्लाह ताला हार्डवर्क का जो रिवॉर्ड है वो जरूर देता है।
इमामुल हक से मैंने पूछा कि आयरलैंड के खिलाफ आपका डेब्यू, पहली इनिंग्स में आप सिर्फ 7 रन पर आउट हो गए थे और दूसरी इनिंग्स में आपके सामने 3 विकेटें गिर चुकी थी, तो ऐसे में अपने आसाब को कैसे कंट्रोल किया?
उस वक्त देखें मुझे एक बात का यही पता था कि अगर हम इधर इसको सर्वाइव करने जाएंगे उस टाइम को तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि बॉल अच्छे हो रहे थे, विकेट बहुत जो है बॉल मूव हो रहा था। तो फिर मैंने और बाबर ने यही प्लान बनाया था कि जो शॉट हमें मिलेगा ना तो हम अपना नेचुरल गेम खेलेंगे, तो वो अल्लाह ताला ने साथ दिया। तो उसमें ये हुआ कि एक तो थोड़े से उन्होंने बैट बॉल भी किए, तो जैसे बैट बॉल होता था तो हम उस पर कोशिश करते थे कि हम बाउंस करें उस बैट बॉल्स पे, तो वो ये हुआ कि एकदम उन पे प्रेशर आ गया क्योंकि वो रन्स रोक नहीं सके। तो मेरे ख्याल से बाबर का भी बहुत जो है उसमें बड़ा रोल है, बाबर ने मुझे काफ़ी हेल्प किया और बाबर माशाल्लाह खुद भी बहुत अच्छा खेला, अनफॉर्चुनेटली एंड पे वो रन आउट हो गया था, लेकिन अब बाबर और मेरी वो इनिंग्स मेरे ख्याल से बहुत यादगार रहेगी क्योंकि हम दोनों ने जिस तरह एक, क्योंकि बाबर काफ़ी अंडर 16 से मेरे साथ खेल रहा है और हम दोनों बहुत एक दूसरे को जानते हैं, तो वो बड़ी हमारी यादगार इनिंग्स है दोनों की।
इमामुल हक से मैंने ये जानना चाहा कि फखर जमान के साथ ओपनिंग का तजुर्बा आपके लिए अब तक कैसा रहा है, और ये तो बताइए कि वर्ल्ड रिकॉर्ड पार्टनरशिप का कब पता चला था, इनिंग्स के दौरान या बाद में?
फखर के साथ मैं 2 साल से पिछले HBL से वो मेरा ओपनिंग पार्टनर है, तो फखर के साथ खेलना हमेशा ही मजा आता है क्योंकि हम दोनों की दोस्ती भी बहुत अच्छी है और हम दोनों एक दूसरे को समझते बहुत हैं, काफ़ी सपोर्टिव है वो, और वो अटैकिंग है और मैं थोड़ा सा सेट होता हूँ फिर मैं अटैक करता हूँ। हम दोनों के गेम एक दूसरे को बहुत सूट करती है, हम रनिंग बिटवीन द विकेट्स बहुत अच्छी करते हैं। अगर मेरे से रन्स नहीं निकल रहे होते या मुझे बॉलर अच्छी बॉलिंग कर रहा था तो मुझे वो आके कहता है कि कोई मसला नहीं, मैं दूसरे एंड से कवर कर लूँगा, तुम्हें जब बैट बॉल मिलेगा तुम कर लोगे, जैसे अगर इसी तरह वाइस वर्सा हिस्सा वो है कि जब उसे बॉल नहीं मिल रहे होते या जब वो थोड़ी सी ऊटपटांग जल्दी जल्दी से बुरा शॉट मार देते, तो मैं उसके पास जाता हूँ कि इतनी जल्दी करने की ज़रूरत नहीं है, अगर 3-4 बॉल डॉट भी हो गए, तुम ऐसे प्लेयर हो कि तुम 2 से 3 बॉल में सारा कुछ कवर कर सकते हो, कि 2-3 चौके लगेंगे सब कुछ ठीक हो जाएगा, तो उसके साथ मज़ा आता है। बाकी रही पार्टनरशिप की बात, तो जब रिकॉर्ड्स बनते हैं तो पता नहीं चल रहा होता आपको, ऐसा था कि जब हमें तो इतना पता नहीं चल रहा था टू बी ऑनेस्ट, लेकिन जब मैं आउट हुआ था ना, तो फ़खर ने मुझे, जब मैं आउट होकर वापस जा रहा था, तो फ़खर ने मुझे कहा कि मां मुझे लगता है कि शायद ये जो हमारी पार्टनरशिप है ये वर्ल्ड की जो है बेस्ट पार्टनरशिप, ओपनिंग पार्टनरशिप हो गई है। लेकिन फ़खर को भी कन्फर्म नहीं था, फ़खर का एक आइडिया था। तो उसके बाद जब मैं वापस गया ड्रेसिंग रूम में, क्योंकि फ़खर तो 200 नॉट आउट किया था माशाल्लाह उसने, जब मैं वापस गया तो मुझे बाहर जाके कन्फर्म हुआ था, लेकिन जब मैं आउट हुआ था तो मुझे फ़खर ने एक, मतलब आप कह सकते हैं कि उसका आइडिया था कि मां ये मेरे ख्याल से जो है इससे पहले कभी 300 ओपनिंग पार्टनरशिप नहीं हुई। तो अच्छा है, रिकॉर्ड्स बनते हैं, अल्लाह ताला और भी हम दोनों को इज्जत दे, और हम दोनों ऐसे ही अभी आगे एशिया कप आ रहे हैं, तो इंशाल्लाह ऐसी परफॉर्मेंस हो।
अठारहवें एशियन गेम्स इन दिनों इंडोनेशिया में जारी हैं। पाकिस्तान इन गेम्स के 35 खेलों में शरीक है, लेकिन अभी तक किसी भी खेल में काबिले जिक्र कारकर्दगी सामने नहीं आई, और अब हॉकी से ही उम्मीदें वाबस्ता हैं। एशियन गेम्स में भारत भी खिलाड़ियों की एक बहुत बड़ी तादाद के साथ शरीक है, और इन खिलाड़ियों ने मेडल्स जीतने भी शुरू कर दिए हैं। भारत की एशियन गेम्स में कारकर्दगी के जायजे के साथ दिल्ली से आदेश कुमार गुप्ता।
इस बार एशियाई खेलों में भारत को रवि कुमार और अपूर्वी चंदेला ने 10 मीटर एयर राइफल मिक्स्ड टीम इवेंट में ब्रॉन्ज मेडल की शक्ल में पहला मेडल दिलाया, और उसके बाद शाम होते होते पहले ही दिन भारत को कुश्ती में 65 किलो वजन के फ्रीस्टाइल मुकाबले में बजरंग पूनिया ने गोल्ड मेडल दिला दिया।
बड़ी चुनौती थी, पर मैंने किसी को पहले नहीं बोला कि भाई गोल्ड लेके आऊं, काफी अच्छा लगा क्योंकि ओलंपिक के बाद सबसे बड़ा टूर्नामेंट है एशियन गेम्स।
वैसे पहले ही दिन भारत को तब बड़ा धचका लगा जब 2 बार के ओलंपिक मेडलिस्ट और साबिक आलमी चैंपियन सुशील कुमार पहले ही दौर में बहरीन के पहलवान से हार गए।
हार को ज्यादा सिर पे लगा के चलोगे या जीत को ज्यादा बढ़ा के चलोगे तो मेरे ख्याल से आप अच्छा नहीं कर पाओगे।
और दूसरे दिन खातून पहलवान विनेश फोगाट ने 50 किलो वजन में गोल्ड मेडल जीता। ऐसे ही कामयाबी हासिल करने वाली वो पहली भारतीय खातून पहलवान है।
मुझे पता नहीं था कि मैं पहली महिला बनूंगी, और ऐसा कुछ दिमाग में आया भी नहीं, क्योंकि काफी सिल्वर हो चुके थे मेरे एशियन चैंपियनशिप में भी। पूरा अपोनेंट का मैच देखा मैच से पहले कि क्या कर सकती हूँ, जो मैंने सोचा था वो सब हुआ और गोल्ड मेडल मिला, और पूरा देश जो दुआ दे रहा था और जो मेरी मेहनत थी वो रंग लाई।
दूसरे दिन विनेश फोगाट के गोल्ड मेडल के अलावा भारत को 2 सिल्वर मेडल निशानेबाजी में मिले। तीसरे दिन सौरव चौधरी ने निशानेबाजी में 10 मीटर रेल पिस्टल में गोल्ड जीता। गौरतलब है कि सौरव चौधरी महज 16 साल के हैं। उनके अलावा संजीव राजपूत ने 50 मीटर एयर राइफल 3 पोजीशन में सिल्वर मेडल जीता। खातून पहलवान दिव्या काकरान ने ब्रॉन्ज, सेपक टाकरा मिक्स टीम ने ब्रॉन्ज, और अभिषेक वर्मा ने निशानेबाजी में 10 मीटर एयर पिस्टल में ब्रॉन्ज मेडल जीता। भारत को चौथा गोल्ड खातून निशानेबाज राही सरनोबत ने 25 मीटर एयर पिस्टल में दिलाया। निशानेबाजी में गोल्ड मेडल जीतने वाली वो पहली भारतीय खातून हैं। बुध को ही खातून वुशु खिलाड़ी नाओरेम रोशोबिना ने ब्रॉन्ज मेडल जीता। उनके अलावा संतोष कुमार और सूर्य भानु ने मर्दों के वुशु मुकाबलों में ब्रॉन्ज मेडल जीते। लेकिन बैडमिंटन में पीवी सिंधु और साइना नेहवाल की मौजूदगी के बावजूद खातून टीम क्वार्टर फाइनल, और के श्रीकांत और HS पढ़ने वाली मर्दों की टीम भी क्वार्टर फाइनल में हार गई। अब ये सिंगल्स में कुछ करें तो करें, ग्रीको रोमन कुश्ती में 6 पहलवान खाली हाथ रहे। कबड्डी में भारत की मर्दों की टीम ग्रुप दौर में साउथ कोरिया से 24-23 से हारी, लेकिन बाकी मुकाबले आसानी से जीते। खातून टीम ने भी दमदार खेल दिखाया है। एशियाई खेलों में अगर भारत की हॉकी टीम का जिक्र ना हो तो बात जमती नहीं। पिछली बार की चैंपियन भारत ने मेजबान इंडोनेशिया को 17-0 और हांगकांग को 26-0 से हराकर अपना दमखम दिखाया। सेमीफाइनल से पहले उसके सामने सिर्फ जुनूबी कोरिया ही थोड़ी चुनौती दे सकती है। पिछली बार गोल्ड मेडल जीतने वाली टीम के कप्तान सरदार सिंह किसी को कम नहीं मानते।
रैंक वाइज अगर देखें तो इंडिया एशियन टीम से काफी ऊपर है, और पेपर्स पे हम स्ट्रॉन्ग टीम है, बट क्योंकि आजकल की जो मॉडर्न हॉकी है किसी भी टीम को इजी नहीं ले सकते।
खातून हॉकी टीम की गोलकीपर सविता पूनिया चाहती है कि टीम गोल्ड मेडल जीतकर सीधे अगले ओलंपिक में जगह बनाए।
पूरी टीम एशियन गेम्स के लिए रेडी है, तो हमारा मेन टारगेट यही है कि हमें डायरेक्ट ओलंपिक क्वालिफाई करना है।
पिछली बार एशियाई खेलों में तीरंदाजी के कंपाउंड टीम मुकाबलों में गोल्ड मेडल जीतने वाली टीम का हिस्सा रहे अभिषेक वर्मा को इस बार भी खुद पर भरोसा है।
बस वही है, इंचियोन जैसा ही इंडिया को मेडल दिलाना है। कंपटीशन मैं नहीं देखता कि कौन टफ है, कौन वीक है, कौन स्ट्रांग है, मैं बस ये जानता हूँ कि मुझे अपने आप को बीट करना है।
इस बार उम्मीदें मुक्केबाज, वेटलिफ्टर और एथलीटों से भी है। टेनिस में भी मेडल पक्का है, खासकर खातून सिंगल्स में। पिछले एशियाई खेलों में भारत ने 11 गोल्ड, 9 सिल्वर और 37 ब्रॉन्ज मेडल समेत 57 मेडल जीते थे। खैर अभी तो ये पहला हफ्ता ही है, इसके बीतने के बाद पता चलेगा कि इस बार भारत की झोली में कितने मेडल आते हैं।
इसी के साथ अब अब्दुल रशीद शकूर को इजाजत दीजिए।